नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। अंकल सैम कॉन्टकाउंट बर्टन डब्ल्यू फोल्सम जूनियर और अनीता फोल्सम की रूढ़िवादी आर्थिक इतिहास की पुस्तक है। यह अमेरिकी सरकार द्वारा निजी उद्योगों को दी गई सहायता, सब्सिडी और प्रत्यक्ष निवेशों का आलोचनात्मक अध्ययन करती है। पुस्तक का केंद्रीय दावा है कि सरकार आर्थिक विजेताओं को विश्वसनीय ढंग से नहीं चुन सकती, क्योंकि राजनीतिक निर्णयों के प्रोत्साहन बाजार में काम करने वाले उद्यमियों के प्रोत्साहनों से अलग होते हैं। लेखक आरंभिक फर, व्यापार से लेकर रेलमार्ग, रसायन, विमानन, ऊर्जा नीति और हरित ऊर्जा तक के उदाहरणों को एक ही तर्क रेखा में रखते हैं। वे जॉन जैकब एस्टर, कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट, जेम्स जे हिल, हर्बर्ट डाओ और राइट बंधुओं जैसी निजी पहल की सफलताओं की तुलना सब्सिडी समर्थित योजनाओं से करते हैं। पुस्तक का उद्देश्य केवल असफल परियोजनाओं की सूची देना नहीं है, यह बताना चाहती है कि लागतों का व्यापक करदाता समूह पर फैल जाना और लाभों का चुनिंदा कंपनियों तक पहुंचना नीति को आर्थिक कसौटी से दूर कर सकता है। इसलिए यह इतिहास सार्वजनिक नीति और मुक्त बाजार विचारधारा के संगम पर लिखी गई तर्क प्रधान पुस्तक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, राजनीतिक उद्यमी और बाजार उद्यमी के बीच प्रोत्साहनों का अंतर। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक अंतर राजनीतिक उद्यमी और बाजार उद्यमी के बीच है। लेखकों के अनुसार, बाजार उद्यमी को ग्राहकों की वास्तविक मांग, लागत, प्रतिस्पर्धा और लाभ हानि के अनुशासन का सामना करना पड़ता है। गलत उत्पाद, गलत समय या बेकार निवेश का मूल्य उसे और उसके निवेशकों को चुकाना पड़ता है। इसके विपरीत, सरकारी निवेश से जुड़े निर्णयों में मतदाता समूहों, प्रभावशाली उद्योगों, नौकरशाही लक्ष्यों और चुनावी लाभ की भूमिका बढ़ सकती है। इस स्थिति में किसी परियोजना की आर्थिक उपयोगिता से अधिक उसका राजनीतिक आकर्षण निर्णायक बन सकता है। फोल्सम दंपति इस तंत्र को इस तरह देखते हैं कि किसी खास कंपनी को लाभ केंद्रित रूप में मिलता है, जबकि करदाताओं पर लागत बिखरी हुई रहती है। इसलिए विरोध संगठित करना कठिन और सहायता प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। पुस्तक का तर्क यह नहीं कि हर सरकारी कर्मचारी अयोग्य है, बल्कि यह है कि व्यवस्था के संकेत अलग हैं। निजी बाजार में लाभ और हानि अपेक्षाकृत तेज सूचना देते हैं, जबकि सार्वजनिक धन में विफलता लंबे समय तक छिप या टल सकती है। इसी प्रोत्साहन अंतर को लेखक सरकारी तौर पर विजेता चुनने की मूल समस्या मानते हैं। दूसरा, फर व्यापार और जल परिवहन में सब्सिडी के विरुद्ध शुरुआती अमेरिकी उदाहरण। पुस्तक अमेरिकी आर्थिक इतिहास के शुरुआती दौर से अपना मामला बनाती है, ताकि सरकारी हस्तक्षेप की आलोचना को केवल आधुनिक राजनीति तक सीमित न रखा जाए। फर व्यापार के संदर्भ में जॉन जैकब एस्टर का उदाहरण निजी उद्यम, व्यापारिक जोखिम और व्यावसायिक अनुकूलन के प्रतीक के रूप में आता है। लेखक इसके बरक्स उन सरकारी व्यवस्थाओं की चर्चा करते हैं जिनमें संरक्षण या सहायता होने पर भी स्थायी व्यावसायिक दक्षता सुनिश्चित नहीं हुई। जल परिवहन के प्रसंग में कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट का नाम महत्वपूर्ण है। पुस्तक उन्हें ऐसी प्रतिस्पर्धी सेवा के उदाहरण के रूप में रखती है जो सब्सिडी निर्भर प्रतिद्वंद्वियों के सामने लागत और सेवा के आधार पर आगे बढ़ी। इन अध्यायों का व्यापक उद्देश्य किसी एक व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि प्रतिस्पर्धा उद्यमों को ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी बनाती है। जब सहायता राजनीतिक संपर्क के आधार पर मिलती है, तो बेहतर सेवा देने के बजाय सहायता बचाए रखने की प्रेरणा पैदा हो सकती है। इस ऐतिहासिक तुलना में लेखक सरकारी अनुदान को तटस्थ सहायता नहीं मानते। उनके अनुसार वह पूंजी और श्रम को उन गतिविधियों में बांध सकती है जिन्हें उपभोक्ता अपने खर्च से पर्याप्त समर्थन नहीं दे रहे होते। यही तर्क बाद के औद्योगिक उदाहरणों का आधार बनता है। तीसरा, रेलमार्गों की तुलना में जेम्स जे हिल का बिना सब्सिडी वाला मॉडल। रेलमार्ग पुस्तक के तर्क का केंद्रीय ऐतिहासिक क्षेत्र है, क्योंकि 19वीं सदी में परिवहन विस्तार को अक्सर सार्वजनिक सहायता के पक्ष में प्रस्तुत किया जाता है। फोल्सम दंपति विशेष रूप से जेम्स जे हिल की ग्रेट नॉर्दर्न रेलरोड को उन रेलमार्गों के मुकाबले रखते हैं जिन्हें भूमि अनुदान या अन्य सरकारी सहायता मिली थी। उनका जोर इस बात पर है कि बिना सब्सिडी वाली कंपनी को मार्ग, लागत, यातायात और रखरखाव के बारे में अधिक सावधानी से निर्णय लेने पड़ते थे। अगर किसी क्षेत्र में पर्याप्त माल या यात्रियों की संभावना न हो, तो वहां विस्तार का जोखिम निजी मालिकों को सीधे प्रभावित करता था। सहायता प्राप्त रेलमार्गों में लेखकों के अनुसार निर्माण को आर्थिक मांग से पहले बढ़ाने और राजनीतिक रूप से लाभकारी विस्तार करने की गुंजाइश बढ़ती थी। यह तुलना यह नहीं कहती कि रेलमार्ग विकास का महत्व कम था, बल्कि पुस्तक पूछती है कि विकास का वित्त पोषण और जवाबदेही किसके हाथ में होनी चाहिए। हिल का उदाहरण लेखकों के लिए बाजार अनुशासन का प्रमाण है, जहां लाभ कमाने की आवश्यकता दक्ष संचालन से जुड़ती है। आलोचनात्मक पाठक यह भी ध्यान में रख सकते हैं कि रेलमार्ग इतिहास भूमि नीति, नियमन और क्षेत्रीय विकास से जटिल है। फिर भी पुस्तक इस प्रकरण का उपयोग सब्सिडी के अनपेक्षित प्रोत्साहनों को स्पष्ट करने के लिए प्रभावी ढंग से करती है। चौथा, रसायन और विमानन में निजी नवाचार को लेखकों की कसौटी। पुस्तक केवल सरकारी विफलताओं पर नहीं रुकती, वह निजी नवाचार के उदाहरणों से अपना प्रतिपक्ष भी तैयार करती है। हर्बर्ट डाउ और राइट बंधुओं के प्रसंग इसी उद्देश्य से शामिल है। डाउ का उदाहरण रसायन उद्योग में तकनीकी प्रयोग, लागत घटाने और स्थापित प्रतिस्पर्धियों को चुनौती देने वाली निजी पहल से जुड़ता है। राइट बंधुओं का उदाहरण विमानन में प्रयोगशीलता, इंजीनियरिंग कौशल और व्यावहारिक समस्या समाधान पर जोर देता है। लेखकों का तर्क है कि नवाचार का स्रोत केवल बड़ी संस्थाएं या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते। कई बार छोटे उद्यमी सीमित साधनों में बेहतर समाधान खोजते हैं, क्योंकि उन्हें किसी वास्तविक तकनीकी या ग्राहक समस्या को हल करना होता है। इन मामलों से पुस्तक यह निष्कर्ष निकालती है कि सरकार को नवाचार की दिशा तय करने के बजाय ऐसी प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों को महत्व देना चाहिए जिनमें अलग अलग विचार आजमाए जा सके। यहाँ पुस्तक की वैचारिक सीमा भी दिखती है, वह सार्वजनिक अनुसंधान, आधारभूत ढांचे या रक्षा संबंधी मांग की संभावित भूमिका पर उतना विस्तार नहीं देती जितना सरकारी निवेश की असफलताओं पर देती है। फिर भी इसकी उपयोगी चेतावनी स्पष्ट है। किसी तकनीक की उपयोगिता का अनुमान राजनीतिक प्रतिष्ठा या घोषित लक्ष्य से नहीं, बल्कि वास्तविक प्रदर्शन, लागत और स्वैच्छिक मांग से जांचा जाना चाहिए। अंत में ऊर्जा संकट, हरित ऊर्जा और सोलिंड्रा के माध्यम से आधुनिक चेतावनी। अंतिम हिस्सों में पुस्तक ऊर्जा नीति और हरित ऊर्जा सहायता को अपने ऐतिहासिक तर्क का आधुनिक विस्तार बनाती है। लेखक ऊर्जा संकट से संबंधित सरकारी नीतियों और बाद में स्वच्छ ऊर्जा कंपनियों को मिली सहायता की आलोचना करते हैं। सोलिंड्रा का मामला इस चर्चा का सबसे पहचाना हुआ संदर्भ है, क्योंकि कंपनी के दिवालिया होने के बाद संघीय ऋण गारंटी पर व्यापक बहस हुई थी। होलसम दंपति इसे इस दावे के उदाहरण के रूप में रखते हैं कि सरकार भविष्य की तकनीक या सफल कंपनी का अनुमान लगाने में निजी निवेशकों से बेहतर नहीं है। उनका तर्क यह भी है कि ऊर्जा जैसे क्षेत्र में नीति निर्माता पर्यावरणीय लक्ष्य, रोजगार के वादे और राजनीतिक दबाव के कारण पूंजी को ऐसी कंपनियों की ओर मोड़ सकते हैं जिनकी बाजार स्थिति टिकाऊ नहीं है। इस अध्याय का बड़ा प्रश्न हरित ऊर्जा के लक्ष्य की वैधता नहीं, बल्कि उसे हासिल करने के साधनों की आर्थिक जवाबदेही है। पुस्तक सीधे अनुदान, ऋण गारंटी और लक्षित सहायता के प्रति संदेह रखती है। संतुलित दृष्टि से देखें तो ऊर्जा परिवर्तन में बाहरी प्रभावों और दीर्घकालिक सार्वजनिक हितों पर अलग बहस संभव है, पर पुस्तक का आग्रह उपयोगी है। किसी भी सहायता योजना को पारदर्शी लागत, विफलता की जिम्मेदारी और राजनीतिक पक्षपात के जोखिम के आधार पर परखना चाहिए। निष्कर्ष में अंकल सैम काउंट उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अमेरिकी आर्थिक इतिहास के जरिए सब्सिडी, औद्योगिक नीति और सरकारी निवेश पर मुक्त बाजार पक्ष का सुसंगत तर्क समझना चाहते हैं। सार्वजनिक नीति के विद्यार्थी, अर्थशास्त्र के शुरुआती पाठक, इतिहास में रुचि रखने वाले नागरिक और सरकारी सहायता योजनाओं का मूल्यांकन करने वाले नीति विश्लेषक इससे लाभ ले सकते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक योगदान यह है कि यह किसी परियोजना को केवल उसके घोषित उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके प्रोत्साहनों, लागतों, जोखिम वितरण और जवाबदेही से देखने की आदत डालती है। पाठक यह प्रश्न पूछना सीख सकता है कि लाभ किसे केंद्रित रूप में मिल रहा है, लागत कौन वहन कर रहा है और विफल होने पर निर्णय लेने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समान विषय की कई पुस्तकों से इसका अंतर इसका लंबा ऐतिहासिक फैलाव है। यह समकालीन हरित ऊर्जा विवाद से शुरू नहीं करती, बल्कि फर व्यापार, जल परिवहन, रेलमार्ग, रसायन और विमानन के उदाहरणों को जोड़कर एक निरंतर पैटर्न स्थापित करने का प्रयास करती है। साथ ही इसका दृष्टिकोण स्पष्टता वैचारिक है और सरकारी हस्तक्षेप के संभावित सफल उदाहरणों पर सीमित ध्यान देता है, इसलिए इसे अंतिम निष्कर्ष के बजाय एक मजबूत पक्षधर और प्रमाण आधारित बहस के रूप में पढ़ना सबसे उपयोगी रहेगा। इसकी विशिष्टता इसी में है कि यह नीति विवाद को अमूर्त सिद्धांतों के बजाय ठोस अमेरिकी व्यावसायिक इतिहास की कसौटी पर रखती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं बर्टन डब्ल्यू फोलसम जूनियर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।